उर्दू में बात करते थे, वह फ्रांसीसी में जवाब देता था। बड़ी बेगम का बाग परीखाना बना हुआ है। चारों बहनें रविशों में अटखेलियां करती हैं। नाजोदा से तौल तौल कर कदम धरती हैं। अब्बासी फूल तोड़ तोड़ कर झोलियां भर रही है। इतने में सिपहारा ने शोखी के साथ गुलाब का रीड तोड़ कर गेतियारा की तरफ फेंका। गेतियारा ने उछाला तो सिपहारा की जुल्फ को छूता हुआ नीचे गिरा। हुस्नारा ने कई फूल तोड़े और जहानारा बेगम से गेंद खेलने लगी। जिस वक्त गेंद फेंकने के लिए हाथ उठाती थी, सितम ढाती थी, वह कमर का लचकाना और गेसू का बिखरना, प्यारे प्यारे हाथों की लोच और मुस्किरा मुस्किरा कर निशानेबाजी करना अजब लुत्फ दिखाता था। कोठे पर चौका बिछा है और एक नाजुक पलंग पर सुरैया बेगम सादी और हल्की पोशाक पहने आराम से लेटी हैं। अभी हम्माम से आई हैं। कपड़े इत्र में बसे हुए हैं। इधर उधर फूलों के हार और गजरे रखे, रीढ़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मगर तब भी महरी पंखा लिए खड़ी है। इतने में एक महरी ने आकर कहा, दारोगा जी हुजूर से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। बेगम साहब ने कहा, अब इस वक्त कौन उठे, कहो सुबह को आए। महरी बोली, हुजूर कहते हैं बड़ा जरूरी काम है। हुक्म हुआ कि दो औरतें चादर ताने रहें और दारोगा साहब चादर के उस पार बैठें। खोजी आजाद के बाप बन गए तो उनकी इज्जत होने लगी। तुर्की कैदी हरदम उनकी खिदमत करने को मुस्तैद रहते थे। एक दिन एक रूसी फौजी अफसर ने उनकी अनोखी सूरत और माशे माशे भर के हाथ पांव देखे तो जी रीढ़ की इनसे बातें करें। एक फारसीदा तुर्क को मुतरजिम बनाकर ख्वाजा साहब से बातें करने लगा। आजाद को साइबेरिया भेजकर मिस क्लारिसा अपने वतन को रवाना हुई और रास्ते में एक नदी के किनारे पड़ाव किया। वहां की आब